वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बेहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। हम लोग अपने मुल्कों, अपने अजीजों अकारब, अपनी धरती माँ, अपने आबाई घरों को छोड़कर अजनबी जमीनों और दियारे गैर का रुख क्यों करते हैं? तरके वतन की बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्योंकि अपने घरों और मुल्कों को छोड़कर दियारे गैर में जाकर बसना दुश्वार है। बेहतर जिंदगी की उम्मीद और बेहतर मुआशी मवाके की तलाश इन वजूहात में शामिल है, लेकिन बासुकात रोजगार का मामला भी मुतादित होनार अफराद को अपनी सरजमीन छोड़ने का बायस बनता है। इनमें हम जैसे मुतादित अफराद भी शामिल हैं जिनका रोजगार उन्हें बैरून मुल्क ले आया। हम जैसे अफराद के लिए दियारे गैर में बसने और फिर इन मुल्कों को अपना कहते हुए फराइज की अदायगी की राह में क्या चैलेंज है, आज हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं सऊदी अरब के एक मारूफ और बड़े शहर जिद्दा में मशरक़ वुस्ता के कलीदी रोजनामों में शामिल अरब न्यूज भी है और इस अरब न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिराज वहाब। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम उनको एक गैर जानबदार तजियाकार के तौर पर जानते हैं। भारत से ताल्लुक रखने वाले सिराज वहाब ने अपना वतन छोड़कर दियारे गैर को अपना वतन कहने का इंतखाब क्यों किया, पहले तो यही सवाल पूछते हैं सिराज वहाब से पॉडकास्ट कल और आज में उन्हें खुश आमदीद कहते हुए। सलाम सिराज और वेलकम टू द प्रोग्राम।
वालेकुम सलाम बेहजत, थैंक यू सो मच। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये पॉडकास्ट का लाया है और उसमें कल और आज जो है, जो आपने अभी जो इतना ब्यूटीफुल आपने जो इंट्रो दिया है वो बहुत जबरदस्त है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हूँ।
बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द प्रोग्राम। तो कल क्या ऐसा हुआ, किस तरह से बताइएगा जरा कि घर बार छोड़कर रोजगार के लिए सऊदी अरब जा बसे।
देखिये ये हुआ कि जब तालिबे इल्म का जमाना था तो आज हर वक्त ये ख्वाहिश रहती थी कि आप अपने अपने मुल्क से, अपने शहर से दूर जाएंगे और बाहर की दुनिया को देखेंगे। ये वो जमाना था जो इंटरनेट वगैरह उस जमाने में नहीं था और दुनिया ग्लोबल विलेज उस वक्त तक नहीं बनी थी, लेट 80s का जमाना, late 90s का जमाना। तो एक ख्वाहिश जाहिर है हर एक यंग जो आदमी है या औरत है उसमें ये ख्वाहिश रहती थी कि बाहर की दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया में क्या होता है। हम कई सारी चीजें सोचते थे कि बाहर जाके देखा जाए और फिर जब लाइब्रेरीज में किताबें पढ़ी, जर्नल्स पढ़े तो उसमें बारहा यही लिखा हुआ होता था कि जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ट्रैवल। ट्रैवल से बेहतर और कोई एजुकेशन नहीं है। किताब का एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज का और कॉलेज का एजुकेशन अपने शहर में आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज देगा, लेकिन ये कि अगर आपको जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ देखना है तो आपको खुद सफर करना है, तो उस सफर पे निकलना है। तो जाहिर है ख्वाहिश थी कि आप अपने घर से निकले, अपने मुल्क से निकले और बाहर की दुनिया को देखें और परखें और अपने आप को अपना या तो लोहा मनवाएं या फिर वहां देखें कि वहां पे क्या मामला है, उनसे सीखें और फिर वापस अपने वतन आए वो तमाम सारे स्किल्स को वगैरह को लेके। तो उस जमाने में ये सब ज़हन में गर्दिश किया करता था।
तो सऊदी अरब जैसे हसास माशरे में काम करते हुए बिलखसूस मीडिया में कैसा तजुर्बा था, क्योंकि कल जब आपने काम का आगाज किया तो सऊदी अरब की सूरत हाल वो नहीं थी जो आज है। तो आज जबकि एक बदला हुआ सऊदी माशरा है, उसमें आपके काम की नौयत पर क्या असर पड़ा, जरा एक लहजा देखिएगा कल की तरफ भी और अपने आज की तरफ भी।
बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने भाईजत। मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। मैं बंबई में मिड डे अखबार में 1990s में था और हम न्यूज रूम में बैठे हुए थे अपने कलीग के साथ बात करते हुए, तो एक साहब वहां पर आए जो हमारे न्यूज एडिटर के दोस्त हुआ करते थे और वो आए और वो हमारे न्यूज एडिटर साहब से बात करने लगे। उनका नाम के एन राधाकृष्णन था, न्यूज एडिटर थे वो। उन्होंने कहा कि सिराज इनसे मिलो, ये सऊदी अरब में बहुत बड़े अखबार से मुंसलिक हैं और उसका नाम अरब न्यूज है और ये वहां पे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो मैंने उनसे बड़ी हैरत से पूछा हमारे न्यूज एडिटर से कि साहब हमने तो कभी सऊदी अरब के बारे में जर्नलिज्म के हवाले से कभी कुछ सुना ही नहीं, क्या वहां पे प्रेस रिलीज के अलावा भी कोई जर्नलिज्म होती है? तो हम सब न्यूज रूम में बैठे हुए सब कहकहे मारने लगे कि ये वाकई सऊदी अरब में कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं वो क्या है सऊदी अरब में। तो फिर हमने उनसे बड़े इश्तियाक हमको हुआ तो हमने पूछा कि भाई वहां पे मीडिया कैसा है, वहां पे कौन से अखबार आते। जाहिर है ये इंटरनेट वाला जमाना नहीं था, तो हम बहुत कम यानी हमको भी कोई इल्म नहीं था कि वहां पे कौन से मैगजीन है या अखबार है। तो 1990s के मिड में जब ये ऑफर आई अरब न्यूज से, उस हम यहाँ पे चले आए, जद्दा में हेडक्वार्टर्स था अरब न्यूज का, और जद्दा में जो है वो आए तो भाई यहाँ पे बड़े नामवर सहाफी यहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से, और खुद एक से बढ़कर एक सऊदी सहाफी उस जमाने में यहाँ पर मरहूम अब्दुल खादर ताश हुआ करते थे, जो अरब न्यूज के एडिटर इन चीफ थे उस जमाने में, और वो उनका बहुत बड़ा नाम था इसलिए कि उनकी महारत सेंट्रल एशिया में हुआ करती थी। ये वो जमाना था जब सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स थे वो सोवियत सर खत्म होने के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अलग अलग अलहदा हो रहे थे और रशियन एम्बिट से या रशियन इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे थे। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर खालिद अल मैना साहब एडिटर इन चीफ आए, और फिर उनका इतना बड़ा नाम, और फिर वो ऐसे बड़े सहाफी, और फिर यहाँ पर ब्रिटिश जर्नलिस्ट भी थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी थे, तो अलग अलग चीजें थी, यानी वहां की सहाफत में यहाँ की सहाफत में ये फर्क था कि उस जमाने में जाहिर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों जगह में शायद गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया तो उतना नहीं हुआ करता था। तो लेकिन सऊदी अरब के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि इस मीडिया में सेंसेशनलिज्म नहीं था, यानी आप जो है वो किसी चीज के बारे में सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते थे, यानी हिंदुस्तान में और गालिबन शायद पाकिस्तान में भी, कि आपने सहाफी ने जो लिख दिया बस वो आखिरी लफ्ज है, उसके बाद उनको कोई चैलेंज नहीं है और कोई कुछ कहे, कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता। ये सही बात है कि उस जमाने में जो सहाफी थे उनके अखदार उनके प्रिंसिपल्स बहुत हाई थे, और वो ऐसी अवलन तो ऐसी कोई हरकत वो करते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कोई चांसेस हो सकते थे कि उससे कोई ज्यादती मीडिया से हो जाए, लेकिन मीडिया को कटघरे में खड़े करने के लिए कोई किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म उस जमाने में वहां पे नहीं था। तो लिहाजा जो सहाफी ने कह दिया वो सहाफी है। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और 1990s में बाबरी मस्जिद का जब सानेहा हुआ तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के दिलीप पाटगांवकर एडिटर इन चीफ थे उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में यानी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है तो वो मैं हूँ, चूंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हूँ। और वो बात बड़ी हद तक सही भी थी, इसके मीडिया पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करता था उस जमाने में, और मीडिया जो तय करता था बस वही चीजें शायद होती थी। जो नए राइटर्स थे उनको बहुत कम मौके मिलते थे, मौका ही नहीं मिलता था, अगर वो लिखते भी थे तो उनको ना कोई जवाब देता था, ना उनको कोई एक्नॉलेज करता था, ना उनको कोई स्पेस मिलती थी, और बस यही होता था कि लेटर टू द एडिटर लोगों ने लिख दिया, अगर आप बहुत लकी हो तो वो अखबार में छप जाता था, वरना तो नए लोगों के लिए किसी किस्म की कोई चांस ही नहीं था। तो हम जब यहाँ सऊदी अरब आए तो देखा कि इस मीडिया में रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है बहुत, यानी सहाफी जो है वो रिस्पॉन्सिबल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि वो क्या लिख रहा है, क्या कोट कर रहा है, और अगर वो कोट अगर वो उसको जो है वो एस्टेब्लिश ना करे, यानी अगर वो ये ना एस्टेब्लिश करे कि वाकई उसने जिससे बात की है उसके बाद उसने ये न्यूज छापी है, तो उसके बाद ही जो है वो कॉन्फिडेंट हुआ करता था। लेकिन एक बात ये थी जरूर कि यहाँ पर सऊदी अरब में लोग जो लोकल पॉपुलेशन था स्पेशली जो सऊदीज हैं वो मीडिया से बात करने से इज्तनाब करते थे। उसकी वजह ये थी कि बदाओखात क्या कि हर वक्त ऐसे होता था कि उनसे किसी किस्म की कोई कोट लिया गया या उनसे कोई बात की गई, उसके बाद उसमें इतना बड़ा बैकग्राउंड वो सहाफी लगा देते थे, स्पेशली मगरबी सहाफी, और जाहिर वो उनके हिसाब से सही होगा, लेकिन वो जो बैकग्राउंड लगा देते थे उससे वो जो लोग यहाँ पे जो कोट देते थे उनकी बड़ी परेशानी होती थी कि भाई आपने ये इस आर्टिकल का आप कैसे हिस्सा बन गए जिसमें सऊदी अरब के या खलीजी ममालिक के खिलाफ लिखा हुआ है, हालांकि आपने तो कुछ कोट गलत वलत नहीं कहा लेकिन पूरी स्टोरी जो है वो नेगेटिव है। और बहुत सारे लोग उस जमाने में जब यहाँ पर सऊदी अरब में आते थे तो वो जो एक स्टीरियोटिपिकल जो होता था कंट्री का, जो हमने डिफरेंट न्यूज एजेंसीज में बना दिया है मुल्कों का, तो वही बस अब जैसे कि मगरबी दुनिया में ये बात बता दी गई कि सऊदी अरब में हर आदमी के पास जो है वो एक तेल की जो है वेल है, इन ऑयल वेल है उसके बैकयार्ड में, और ये कि शायद हो सकता है वो जब चाहे वो पंप करके तेल निकाल ले, और ये समझते थे कि हर जगह बस ऊंट ही ऊंट नजर आ रहे हैं। तो इतना मॉडर्न कंट्री, इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, لیکن جو اگر آپ مغربی دنیا کے یا انڈیا میں یا پاکستان میں بھی سعودی عرب کے حوالے سے اگر آپ کچھ پڑھتے تو وہ بالکل نیگیٹو اسٹیروٹائپ تھا. بہت سارے لوگ صحافی یہاں پہ آتے تھے اس زمانے میں بھی, جب آتے تو ان کے ذہن میں نقشہ پہلے سے ہی ہوتا تھا کہ اسٹوری کیا ہونی ہے یا اسٹوری کیا ہے. وہ صرف آتے اس لیے تھے کہ اس میں ایک دو کوٹس کسی کے مل جائے تاکہ اس پہ یہ اسٹیمپ لگ جائے کہ فلاں فلاں صحافی جو ہے وہاں پہ گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے یہ رپورٹ دی. یہ اس ملک کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ نالج کبھی بھی نہیں رہا, وہی جو ہے منفی نیگیٹو اسٹیروٹائپس اس کے رہے. اب یہ چیزیں جو ہے, اچھا اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خود اس ملک میں لوگوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی اسٹوری ویسٹرن یا مغربی صحافیوں کو بتائیں یا ان سے بات کریں. ظاہر ہے دونوں طرف سے ریزرویشنز تھے, یہاں سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا اور وہاں سے بھی کوئی بات کرنے کی اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو ان کو کوئی سمجھنے میں کوئی بہت جلدی سے آسانی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں انٹرنیٹ کا زمانہ آیا, پھر وہ یاہو چیٹ رومز آئے اور پھر تمام ساری چیزیں کھلی اور الگ الگ یعنی بلیک بیریز اور پتہ نہیں کیا کیا جب آنے لگے اور پھر ٹی وی جو ہے وہ رولز ریلیکس ہونے لگے تو پھر لوگوں کا اعتماد بحال ہوا, لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. جتنی فلموں کے بارے میں, جتنی امریکن سیریلز کے بارے میں, جتنی امریکن سوپ آپراز کے بارے میں, جتنی امریکن سنگرز کے بارے میں یہاں پر لوگوں کو معلوم ہے, شاید ہی کسی کو معلوم ہو, اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ سعودیوں کا امریکن یونیورسٹی سے فارغ ہے, وہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں, وہاں سے ڈگریز انہوں نے حاصل کی ہیں اور وہ لوٹ کے آئے ہیں, تو وہ دے آر ایز گڈ ایز امریکنز. وہ جب وہ آئے اور یہاں پر وہ ڈفرینٹ شعبوں میں جب وہ آئے انہوں نے اپنی مینیجرل پوزیشن سنبھالی تو پھر امریکنز جب یہاں پر آئے تو پھر انہوں نے دیکھا ان سعودیوں سے بات کی تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنی ایڈوانس سوسائٹی ہے. یہاں کے لوگ وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ بہت ریگریسو ہے یا ریٹروگریڈ ہے یا بہت دقیانوسی یا قدیم زمانے کے, ایسا نہیں. ماڈرن لوگ, حجاب کرنے والے, انگریزی بولنے والے لوگ, ڈاکٹرز, لیکچررز, انٹرنیٹ کے ایکسپرٹس, سیکورٹی ایکسپرٹس, ایسے لوگ, بایولوجسٹ, سائنٹسٹ جب دیکھے تو پھر ان کا تمام سارا جو ہے وہ پرسپشن سعودی عرب کا چینج ہوا. اسی طرح ہمارا بھی پرسپشن, اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان میں بہجت جو بھی سعودی عرب کے حوالے سے یا یہ خلیجی ممالک کے حوالے سے جو بھی باتیں ان کو جو پتا ہے وہ مغربی خبر رساں ایجنسیز تک سے ان پہنچی. اس لیے کہ ہماری تو کوئی یعنی انڈیا اور پاکستان کی تو کوئی نیوز ایجنسیز یہاں پہ فعال نہیں تھی پہلے, نہ کوئی وہ ایک کا دکا کسی نے اگر لکھ دیا, مکتوب صحرا کسی نے لکھ دیا وہاں پر ڈان میں یا اخبار جہاں میں یا ہندوستان کے کسی اخبار میں کسی نے لکھ دیا تو وہی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگا, لیکن یہ کہ ایسا کوئی انفارمیشن ان کے پاس لوگوں کے پاس نہیں تھا تو لوگ ایسے سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہندوستانی صحافی, مشہور صحافی ظفر آغا صاحب یہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ریاض. وہ آئے تو پہلی غالباً شاید ان کا پہلی مرتبہ ریاض میں تھا, آج سے 10-15 سال پہلے. جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی ڈائریز لکھی, یعنی ڈیزرٹ ڈائریز سعودی عرب کے حوالے سے, تو انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ ریاض تو اتنا ماڈرن سٹی ہے اور ایک لین ہائی ویز ہے اور دنیا کی بہترین گاڑیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں پہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو ہم کو حیرت ہوئی کہ ظفر آغا جیسے اتنے جید صحافی, ان کو تک علم نہیں تھا کہ ریاض ایک دم ماڈرن میٹروپولس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ صرف لوگ اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ صرف یہاں پر کیملز ہیں اور کیملز ٹو کیڈیلیک, ایک بہت فیمس ایکسپریشن ہوا کرتا تھا, بس وہی استعمال کرتے تھے لوگ. تو یہ سب چیزیں کھلنے سے بہجت لوگوں کے اندر اویئرنیس ہوئی. اچھا پھر آمد و رفت بھی ہوئی, جو تارکین وطن آپ نے جیسے انٹرو میں آپ کے ذکر کیا, تارکین وطن کا جو پروفائل تھا وہ بھی چینج ہوا. ایک زمانہ تھا جو ہمارے صرف ہندوستان, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے بہت یو نو لیبر کلاس کا طبقہ آتا تھا, یعنی جو بلو کالر ورکرز جس کو آپ کہتے تھے, تو وہ بہت زیادہ, ظاہر ہے وہ بہت زیادہ واپس جا کے کوئی بہت ساری چیزیں تو نہیں بتاتا تھا, وہ اپنے بس ریال اور روپیے کے کنورژن کے بارے میں کہتا ہوگا اور اپنے اپنے کنسٹرکشن کے کام میں. اس کے بارے اس کا پروفائل چینج ہوا, پاکستان سے بڑے بڑے لوگ آنے لگے, بڑے بڑے صحافی آنے لگے, بڑے بڑے سائنٹسٹ آنے لگے, بزنس مین آنے لگے. اس کے بعد خواتین جو ہے یہاں پر پاکستان کی اور ہندوستان کی جو ہے اکیڈمکس میں آئیں, یہاں پہ یونیورسٹیز میں وہ پروفیسرز ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں, तो उनका जो है सऊदियों से फिर इंटरेक्शन हुआ, तो फिर फिर पूरे मुल्क का रवैया और उसका प्रोफाइल और उसका नक्शा, उसका परसेप्शन फिर चेंज होने लगा। और जाहिर है फिर जब जब चीजें खुल गई तो एकदम साफ सब पे आया हो गया कि ये बहुत मॉडर्न सोसाइटी है। हम इसको जो समझते थे आज से 10-15 साल पहले, वो हमारी गलतफहमी थी।
अच्छा, आपका खानदान और बच्चे आपके साथ ही रहे, तो एक अजनबी सरजमीन पर जाहिर है जब हम अपनों से दूर रहते हैं तो सामने दुश्वारियां भी होती हैं, क्योंकि अपने मुल्कों में जब हम रहते हैं तो एक तरह से हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो सऊदी अरब में बच्चों के साथ जिंदगी गुजारते हुए कभी अपने उस कंफर्ट जोन से निकलने का पछतावा हुआ आपको?
मैंने देखिए पछतावा तो बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए पछतावा नहीं हुआ कि यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पे आपने देखा कि एक बहुत ही जबरदस्त लोगों का नेटवर्क, सोशल नेटवर्क यहाँ पे मौजूद था। चूंकि मैं सहाफत में था इसलिए लोगों से मिलना और लोगों से बातें करना और लोगों से इंटरेक्ट करना और उनसे नेटवर्क करना ये जॉब का हिस्सा था, ये अपने इस जॉब का जो है डिमांड भी थी। तो लोगों से मिलना जुलना रहा, ये रहा। तो जब फैमिली आई यहाँ पर तो सब लोग जो है एक दूसरे को हाथों हाथ लेने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर इतने जबरदस्त पाकिस्तानी कम्युनिटी है, फिर इंडियन कम्युनिटी है, फिर सऊदी कम्युनिटी है, फिर अरब कम्युनिटी है, जापानीज है, तो इन लोगों से इंटरेक्शन करने से ये आपकी जो वो जो जिस फीलिंग का आप जिक्र कर रही हैं वो फीलिंग का यहाँ एहसास नहीं हुआ। ये एहसास नहीं हुआ कि आप अपने मुल्क से दूर इतने कोसों दूर या सात समंदर पार जब आप आ गए हैं तो फिर यानी कि यहाँ पे एकदम अजनबी, वो अजनबियत महसूस नहीं हुई। इसलिए कि हर वो शख्स जो यहाँ पे पहले से मौजूद था वो इस प्रोसेस से गुजर चुका था और वो जानता था कि अगर किसी को अकेलापन महसूस हो तो उसके लिए कैसे उससे बातें करना है। तो वीकेंड पे पार्टीज हो रही हैं, बेगम और वगैरह जो है वो किटी पार्टीज कर रही हैं, उन्होंने अपना एक हलका बना लिया। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुशायरे करने लगे, उर्दू की महफिलें सजने लगी। उसके बाद कई सारे लोग तो एक तो पूरा एक तबका ऐसा था बेहतर कि जो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों पे जो बना, यानी वो अनकही, तन्हाइयां और मरीरा खान के पूरे ड्रामे और तमाम सारी चीजें वो देख देख के जो है वो बड़े, बल्कि कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम यहाँ पर जो सऊदी अरब में थे वो अपने बच्चों के नाम पाकिस्तानी सीरियल के नाम पे रखे, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, इसलिए कि उनके लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट था। अच्छा, ये वो जमाना था कि जहां पे जिस वक्त सब यूट्यूब पे नहीं दिखता था, वीसीआर के जो कैसेट्स लाने पड़ते थे बाजाबता वो रेंट पे जो है मिलती थी, और लोग थर्सडे फ्राइडे उस जमाने में जो वीकेंड हुआ करता था, तो फैमिलीज जो है ये जो ड्रामास थे, जो सीरियल थे, इनके वीडियो कैसेट्स लेते थे, साथ साथ आठ आठ जो है उसकी कैसेट लेके घर पे ले आए और उस तरह जो है अपना वक्त गुजारा और तीन चार फैमिली साथ आ गई, या फिर नहीं तो बहर पे चले गए, कॉर्निच पे चले गए, वहां पे बारबेक्यू वगैरह किया। तो ये एहसास मैं समझता हूं कि नहीं रहा कि आपने अपना मुल्क छोड़ा। जहां तक कि बच्चों का सवाल है, बच्चों का ये मामला रहा कि चूंकि वो यहाँ पैदा हुए उनको तो यही मुल्क जो है अपना अपना वतन लगता है। हालांकि ये बात तय है कि वो यहाँ के शहरी नहीं है, वो यहाँ पैदा जरूर हुए हैं या पले बड़े हैं, लेकिन एक दिन उनको अपने अपने मुल्क को रुखसत होना जाना है अपने मुल्क के लिए, तो उनके लिए मामला बिल्कुल जो है मुख्तलिफ होगी। जो नॉवेल रूट्स में जो किया हुआ है कि हम एक ही वक्त में रहते हैं कई शहरों में वाला मामला, वो बच्चों के साथ होगा। हमारे साथ तो अब ये था कि चूंकि वो सहाफत में हर दिन एक नई चीज में उसमें मशगला लगा रहता था तो ये एहसास बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये जरूर लगा कि हमने जिंदगी के बेहतरीन वक्त एक ऐसे मुल्क में गुजार दिए, लेकिन अपने वालिद के साथ उनका असल जो पीरियड था जिनके साथ हम शायद रहना चाहते थे शायद हम उस वक्त नहीं रह सके। खतों की बात किताबत होती रही और सालाना हम जाते रहे, लेकिन ये सबसे बड़ी कीमत ज़ाहिर तारकीन वतन को अदा करनी पड़ती है कि वो अपने माँ बाप से जो दूर होता है, और माँ बाप से दूर होने का जाहिर है उसका तो कोई निमल बदल तो को हो नहीं सकता। तो वो ये सबसे बड़ी चीज रही कि आपने
ये कमी रही
इतने दूर आप छोड़ आए हैं, या तो आप उसको सेल्फिश कहिए या आप कहिए कि अपनी एडवांसमेंट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, या अपनी जिंदगी को खूब से खूब तर बनाने के चक्कर में आपने ये चीज तो जरूर खोया है। परदेश में तुम, एक शेर था कि परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے؟
بالکل میرا یہ سوال ہے آج کے اس پروگرام میں. چلیے پہلے اب وہی کر لیتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا کہ گھر کیسا لگا ہے تو مجھے بھی ایک زمانہ ہو گیا گھر سے باہر نکلے ہوئے یا وطن سے باہر نکلے ہوئے. اب یہی وطن ہمارے وطن ہے, 30 سال پہلے نکلے ہوئے. تو کیا آپ میری طرح آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ عشروں تک جب ہم ملک سے باہر کام کرتے ہیں اور اپنے ملکوں میں زندگی کی مین سٹریم سے ہم نکل جاتے ہیں تو پھر اپنے ہی ملک میں ہونے والی تبدیلیاں ہمیں اسی مخصوص معاشرے کے لیے یعنی اپنے وطن کے اندر جو معاشرہ ہے اس کے لیے اجنبی بنا دیتی ہیں؟ کبھی فیل ہوا یہ؟
بالکل صحیح, یہ بالکل صحیح ہے بہجت. میرے ایموشنز اور آپ کے ایموشنز بالکل یکساں ہیں, بالکل یہی بات ہے. دیکھیے میں اپنے ملک سے 1995 جولائی میں نکلا ہوں اور میرے ذہن میں اپنے ملک کا نقشہ وہی نقشہ ہے جو جولائی 1995 میں تھا. منجمد ہو گیا ہے وہ, فروزن, اٹ از فروزن ان ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میں 1995 میں اپنے ملک میں چھوڑ آیا ہوں وہ لوگ اب بھی اسی حالت میں ہیں. حالت سے مراد اسی ایج میں ہیں. یعنی جب میں اب اپنے دوستوں کو جا کے دیکھتا ہوں تو وہ ان کی فزیکل اسٹرکچر سے مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی میرا دوست ہے جس کو میں چھوڑ کے گیا تھا. اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کو 1995 میں چھوڑ آیا تھا وہ بالکل ہو بہو اسے ویسے ہی ہوں گے جس طرح میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا. غالباً شاید وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ وہی سراج ہوں گے جو 1995 میں گئے تھے تو اسی طرح. لیکن وقت نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے شاید کسی کو اندازہ نہیں ہوتا, اور ہمارے ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کہ وقت چلتا رہتا ہے اور وقت رکتا نہیں ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کوئی چیزیں جو ہے وہ بالکل رکی ہوئی ہوتی ہے. لیکن کیا پتہ ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. دنیا بالکل چینج ہو گئی ہے. ہندوستان کا منظرنامہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو تصور نہیں کر سکتے کہ ملک کیسے ہو گیا ہے. وہ شاید لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. اب اگر میں اپنے بچوں سے کہوں کہ ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا تو سمجھیں گے شاید میں کسی الف لیلوی کہانیوں کو سنا رہا ہوں. وہ اس چیز کو تصور نہیں کر سکیں گے, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے کہ ملک یہ وہی ملک ہے جو ہم چھوڑ کے آئے تھے. تو ظاہر ہے دیر از اے سینس آف لاس, ایک سینس آف لاس ہے کہ اور سینس آف نوسٹلجیا بھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جب اپنی چھٹی پہ سے جائیں گے تو اسی طرح سب کو پائیں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم اب وہاں پر اجنبی ہو گئے ہیں. وہ جو سیٹ اپ ہمارا تھا وہ سیٹ اپ نہیں ہے. لوگ بچھڑ گئے ہیں, لوگ چلے گئے ہیں, لوگ دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں اور ہماری جو یادیں تھیں وہ صرف یادیں بن کے رہ گئی ہیں.
ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ کل کے سعودی معاشرے میں اور آج کی صورتحال میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے, اور اس تبدیلی نے آپ کے کام اور فرائض کی ادائیگی کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟
دیکھیں بہجت, جو جس وہ زمانہ تھا کہ ہم ایک اگر کوئی آرٹیکل ہے اور اس میں اگر کوئی تصویر لگانی ہے تو تصویر مونوکروم جو ہے لائبریری میں جا کے گھنٹوں صرف اسی میں چلے جاتے تھے کہ ایک صحیح تصویر ایک صحیح فیچر کے ساتھ مل جائے. آج زمانہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس اتنی فوٹو ایجنسیز اویلیبل ہے, آپ نے صرف سبجیکٹ اس میں ڈالا اور ہزاروں فوٹوز آپ کے پاس آ گئی. ایک سیکنڈ میں آپ نے کر لیا, یوں کر لیا, یہ تبدیلی آ گئی. ایک وہ زمانہ تھا کہ آپ کو 8 بجے پورے پیجز جو ہے وہ پرنٹرز کو بھیجنے ہوتے تھے اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پاتے تھے, اس لیے کہ وہ ہاٹ پریس کا زمانہ تھا, اس میں کوئی بہت جلدی تبدیلی نہیں ہوتی تھی اور لاسٹ منٹ چینجز بڑی مشکل سے ہوتے تھے, مشکل زمانہ تھا. آج کا زمانہ یہ ہے کہ آپ آخر لمحے تک آپ پی ڈی ایف چینج کر دیں پرنٹر کو بھیجنے سے پہلے, اور پرنٹر کو بھیجنے کا معاملہ چند سیکنڈز کا ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب آپ کو ایک کسی آدمی سے بات کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو کال کرنا پڑتا تھا کہ اس شخص کا فون نمبر مل جائے. اچھا پھر صحافیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ کسی کو دیتے نہیں تھے, شیئر نہیں کرتے تھے. وہ تو ظاہر وہ کہتے تھے کہ بھائی دس از مائی کانٹیکٹ, آئی ول ناٹ شیئر اٹ وتھ اینیبڈی. تو وہ تھا. لیکن اب آپ دیکھیں وہ جس شخص سے آپ کو بات کرنا ہے اس کا ٹویٹر پروفائل موجود ہے یا وہ فیس بک پر موجود ہے, آپ نے ان کو ایک ڈائریکٹ میسج بھیجا اور فوری طور پہ جو ہے ان کا جواب آ گیا.
ابھی بات جو کر رہے ہیں اس میں جو سوشل میڈیا کی بات ہوئی, نئے سارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کی بات ہوئی, تو اس کا جو ایک پرنٹ میڈیا کی صحافت ہے اس پر کیا اثر پڑا؟
بہت اثر پڑا ہے بجت, اتنا اثر پڑا ہے کہ مطلب یہ کہ یعنی اب اس سے پتہ نہیں چلتا کہ آگے آنے والے زمانے میں کیسا ہوگا. جیسے مثلا یہ کہ آپ اور ہم اب جانتے ہیں कि हमसे पहले खबर हमारे खारी के पास मौजूद है, उसके पास खबर मौजूद है, उसने या तो सोशल मीडिया पे देख लिया है, उसने ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पे ऑलरेडी देख लिया है, हमसे पहले शायद उसने देख लिया है, हमसे ब्रेक करने से पहले शायद उसने पढ़ लिया है। तो अब दूसरे दिन यानी आज की खबर, इस वक्त की खबर अगर हम दूसरे दिन लगाएंगे या आज के अखबार में लगाएंगे और कल सुबह जब वो पहुंचेगा तो वो खबर जो है 24 घंटे लेट वो खबर उस तक होगी, जाहिर है वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अब इस पे जो है कई सारी जो है एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है कि कैसे किया जाए। खुद आपका जो है रेडियो के अंदर जो तब्दीली आपने देखी, एक जमाना आया कि हम समझते थे शायद रेडियो खत्म हो गया, लेकिन अब रेडियो के बगैर जिंदगी का तस्वीर नहीं कि जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं कि आपको सुनना है पॉडकास्ट, सुनना है आपको खबरें सुननी है, आपने लगा दी थ्रू इंटरनेट और आपने खबरें सुननी और रेडियो का फिर से जो है एक रिवाइवल हुआ। लेकिन अखबार में अब ये हुआ एक्सपेरिमेंटेशन, हमारे अखबार में कम से कम और दूसरे अखबार में भी ये मामला है, न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में, कि खबर के पीछे की खबर दी जाए। यानी खबर, अब खबर अपने आप में कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर की पीछे क्या मुहरकात थे, उसकी एनालिसिस क्या थी, उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियंस लोगों की क्या है, इसके ऊपर अब ज्यादा तरजीह दी जा रही है, यानी एनालिसिस पर। अब बहुत वक्त आपने देखा कि सब लोग एनालिसिस पे, मतलब एक जमाना हम, एक वो भी जमाना था पहले, अगर आप जानते हैं कि हम लोग सब क्रिकेट मैचेस देखते थे, लेकिन क्रिकेट मैचेस देखने के बावजूद हम दूसरे दिन अखबार का इंतजार करते थे, पता नहीं क्यों, हालांकि हम सब कुछ देख चुके होते थे, हमने वो जावेद मियादाद का आखिरी बॉल पे जो सिक्स लगाया हम देख चुके, हम सबने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे उसको देखा, लेकिन हम बेतहाशा दूसरे दिन अखबार का इंतजार कर रहे थे कि अखबार ने क्या लिखा। तो हूबहू वही चीज जो थी अब इस वक्त जो है वो अखबार की दुनिया में अब भी है, यानी लोग खबर को जानते हैं, लोगों के पास खबर मौजूद है, लेकिन वो अपने अपने फेवरेट सहाफी से, अपने पसंदीदा सहाफी से या अपने पसंदीदा एनालिस से वो ये सुनना चाहते हैं कि क्या उन्होंने जो सोचा उस खबर के बारे में, क्या उनसे वो मेल खाती है वो सोच। तो ये चीज अब भी बाकी है, इसीलिए लोग अब भी शायद अखबार का इंतजार करते हैं, और या अगर इंतजार न भी करते हो तो इंटरनेट पे वो उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इंतजार करते हैं कि खबर के पीछे की क्या खबर है।
बहुत अच्छी बात रही सिराज, मुझे लगता है कि हमने काफी मौसुआत के बारे में बात कर दी, खासतौर पर एक जो तारिक वतन सहाफी है वो किस तरह से महसूस करता है। मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे जैसे लोग और हमारे साथी इस गुफ्तगु को सुनकर, सुनना उनको अच्छा लगेगा, वो इसके साथ रिलेट कर सकेंगे, तो इसमें बहुत गुंजाइश है। फिर भी आपके साथ बात होगी कल और आज के बारे में जो होने वाली तब्दीलियां हैं मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ जगह की जिंदगी में, तो उस पर फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ग्रेटफुल।
थैंक यू सो मच बहजत, आपसे बात करने में हमेशा बहुत खुशी महसूस होती है। आपके इस पॉडकास्ट के तमाम सुनने वालों को हमारा मोहब्बत भरा सलाम, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, सिंपली ग्रेटफुल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी, पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला, इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा।